أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہماری بحث الحاد میں شروع ہوئی تھی اور مختلف مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. پچھلے درس میں جو اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ تھا کہ الحاد کے اسباب کیا ہیں, اور مختلف جو ہے وہ وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. اس درس میں بھی میں چاہوں گا کہ ایک بعض جدید نکات کے جو پچھلے درس میں اشارہ نہیں کر پائے اس کا اضافہ کروں, چونکہ ایک اہم بحث ہے, کیونکہ الحاد میں اگر کوئی بندہ بحث کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ کہاں کہاں پر مشکل پیش آئی اور یہ ملحد ہوئے, یا کون کون سے ایسے نکات ہیں کہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں الحاد کی, یعنی دلیل بناتے ہیں الحاد کے لیے. یا مثلا اسباب جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پر مغالطے کر رہے ہیں. تو یہ اسباب جب آپ کے لیے واضح ہو جاتے ہیں تو یہ جاننا اور اس کو پرکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ الحاد کا سبب سب سے بڑی چیز جو بنی ہے اور بن سکتی ہے اور یہ بنتی رہے گی وہ ہے جو روشی ایک بحث ہے جس میں حس اور تجربے کو ملا کرا دیا جاتا ہے اور اس بات کا اقرار کر لیا جاتا ہے یا اس بات کا اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے کہ اصالت فقط حس کو حاصل ہے, معیار معرفت کی, حقیقت کی, واقعیت کی معیار فقط حس ہے, حس و تجربہ. آپ دیکھیں جتنے بھی ملحد ہیں ان کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مشترکہ ایک نقطہ یہی ملے گا کہ انہوں نے جو اعتماد کیا اور اندر ایک کیا ہے, ایک غلو کی حد تک اعتماد کیا حس و تجربے کا, اور کہنا شروع کر دیا کہ جو چیز حس میں آئے گی وہ واقعیت اور حقیقت ہے, اور اگر جو چیز حس سے باہر ہوگی وہ نہ یہ کہ مشکوک ہے, مثلا کہتے ہیں ہے ہی نہیں اصلا. کہ فلسفے کے درس میں جب ہم پوزیٹیویزم کے اوپر جا کر گفتگو کریں گے وہاں اس کی طرف تھوڑا جو ہے وہ اشارہ ہوگا کہ یہ پوزیٹیویزم جو ہے وہ یہی کہتی ہے. تو ایک سبب جو الحاد کا ہے, اور جو بندہ بھی الحاد کی طرف جا رہا ہوگا آپ ان کو پرکھ کے اور بحث کر کے دیکھ لیں, وہ جس روش کے تحت جا رہا ہوگا, جس میتھڈ کے تحت جا رہا ہوگا وہ حسی ہوگا. ہمیں تو نظر نہیں آتا, اگر ہے تو کیوں نہیں نظر آتا. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ ملحد تھا, اس نے کہا کہ ہم جہاز پہ چڑھ کے گئے, اتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ تھا, میں نے بڑی کوشش کی, خدا ملا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ بعضوں نے اس حد تک کہا کہ جب تک وہ چیز ہمارے اس لیبورٹری کے اندر موجود آلات کے اس جراحی کے اندر نہ آئے, چھری چاقوؤں کے نیچے نہ آئے, وہ حقیقت نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے جب آپ اس روش کے تحت آگے جائیں گے, کوئی بھی انسان اس روش کے تحت آگے جائے گا, وہ جتنے بھی حس سے ماورا حقائق ہیں ان کا انکار خود بخود کرے گا. اور آج یہی روش ہماری یونیورسٹیز کے اندر لاشعوری ان کے جو حصے میں ڈال دی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا معیار حس اور تجربہ ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے جو نوجوان اگر بعض اوقات ایمان اور دین اور اعتقادات میں مشکوک نظر آتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں اور وہ قانع نہیں ہو پاتے, اگر آپ تھوڑی سی تحلیل کر کے دیکھیں تو آپ فوراً اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ جس انداز سے دیکھ رہا ہے مطالب کو परख रहा है मतालिब को, जिस रास्ते पे चल रहा है इन मतालिब के हुसूल के लिए, वो कौन सा रास्ता है? हिस और तजुर्बा। और हिस भी कौन सी? फकत जाहिरी। तो इस वजह से ये इल्हाद जो है वो वजूद में आता है। मसलन आप आकर देखें कि मसलन स्टीफन हॉकिंग एक दुनिया का एक बड़ा नाम है कि फिजिक्स आज जो है इसी के नाम पर जो है वो तदरीस हो रही है। ये अपनी किताब द ग्रेट डिजाइन के अंदर वाजह तौर पर ये लिखता है कि फलसफा मर गया है। क्यों? कि जिन सवालात के जवाब पहले फलसफा दिया करता था, आज वही जवाब क्या है? साइंस देना शुरू कर रही कर दिया है उसने। तो साइंस के होते हुए फिर फलसफे की जरूरत नहीं है, बस फलसफे का जमाना खत्म। और साइंस का मेथड क्या है? तो जब आप फलसफे के जमाने को खत्म कर रहे हैं, फलसफे की वैल्यू और कदर और कीमत को खत्म कर रहे हैं और हिस के ऊपर बुनियाद रख रहे हैं, साइंस के ऊपर बुनियाद रख रहे हैं पूरे हकायक को तहलील करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका नतीजा इल्हाद नहीं निकलना है। और इसी वजह से देखें स्टीफन हॉकिंग जो है वो मुल्हिद हुआ। इसी तरीके से आप रिचर्ड डॉकिंस को जाकर पढ़ें, क्या है वो? इसी हिस्सों तजर्बे के जरिए आकर नतीजा जो है वो दे रहा होता है। जी हाँ, वही ना, फलसफे में तहवुलात आकर फलसफा जो वजूदी था वो जुदा हो गया और इलाहियात के नाम से पहचाना जाने लगा, जिसमें वजूदी बहस होती थी, और ये उलूम जुदा हो गए, फिजिक्स वगैरह रियाजियात और ये सारी जो फलसफे के जुमरे में आती थी ये जुदा हो गए आकर। और फिर उसमें तहकीक का जो सिलसिला था वो जब जुदा हुआ आके, तो फिर ये नतीजा निकलता है आके कि उन्होंने आकर जो है वो ये नजरिया जो है वो दिया है आकर। बारह एक चीज ये है, अब हम आकर देखते हैं कि तजुर्बी जो रविश है उसके हुदूद अरबा क्या है, मतलब उसकी हद क्या है। आया साइंसदानों के या साइंसदानों को छोड़ के साइंस के अंदर ये काबिलियत मौजूद है कि वो हर चीज के बारे में इजहार नजर कर सके, हर चीज की तफसीर कर सके, या नहीं? बल्कि उसका कोई दायराकार है, उसके लिए कोई कवायद और जवाबित हैं, उसका एक अपना मैदान है कि जिस मैदान के अंदर जाकर ये अपने नताइज देती है। अगर ये मैदान ना हो तो नताइज नहीं दे सकती। अगर आप जाकर इस हिस्सी और तजर्बी रविश को जाकर जो है वो तहलील करें तो आपको पता चलेगा कि तमाम उलूम जब तक वो फलसफी कायदे से इस्तेफादा न करें वो एक नजरिया तोलीद नहीं कर सकते। नजरिया बनता ही तब है कि जब फलसफे का कायदा बीच में आएगा। कैसे? देखें, आप जाकर तजुर्बे की तारीफ पढ़ें कि तजुर्बे की डेफिनेशन क्या है, तो आपको एक चीज जो है वो नजर ये आएगी कि हिस्सी तौर पर मुशाहदा करना और उस मुशाहदे के अंदर तकरार का पाया जाना, मुकर्रर बार बार, ये जरूरी है। अगर आपने किसी नतीजे को हासिल करना है तो आपने हिस्सी मुशाहदा करना है और बार बार करना है और मुख्तलिफ हालात में करना है। मसलन आज अगर किसी के भी सर में दर्द होता है तो कौन सी गोली दी जाती है? पैरासिटामोल, या मशहूर मसलन डिस्प्रीन कहा जाता है। ये जो कहा जाए जिसके भी सर में दर्द होगा वो डिस्प्रीन की गोली खाए तो उसका ठीक हो जाएगा, इसने कितने मरहले तय किए हैं इस नजरिए ने? पहले जो है डॉक्टरों ने मुशाहदा किया, यानी उसको तजर्बा किया, जहां के वो रहने वाले थे वहां पे पहले उन्होंने तजर्बा किया, फिर उसका माहौल चेंज करके कहीं और जाकर तजर्बा किया, फिर मुल्क चेंज करके जो है वो तजर्बा किया, यानी मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मकानों में, मुख्तलिफ जमानों में जाकर इसका तजर्बा किया जाके, और जब देखा नतीजा एक मिल रहा है तो आया ये नतीजा जो मिल रहा है इस वक्त, किसी भी साइंसदान को यह हक हासिल है कि वो आकर कहे कि बस दुनिया का जो भी इंसान सर दर्द में मुब्तला होगा डिस्प्रेन से वो ठीक हो जाएगा। तजर्बे को हक हासिल नहीं है। साइंस फकत इतना कह सकती है कि जो तजर्बा हुआ है वो इसी तरह ही है। अगर 100 बंदों पर तजर्बा हुआ है, साइंस कहेगी ये 100 बंदे अगर डिस्प्रेन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। 1000 बंदों पे, 1,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़ बंदों पे तजर्बा हुआ है तो 10 करोड़ के ऊपर ही हुक्म लगाएगी। साइंस 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि हिस्सी रविश कहती यही है कि हिस होगा, तजर्बा होगा तब हुक्म लगेगा, और जिनके ऊपर आप हुक्म लगाना चाहते हैं उनके ऊपर तो तजर्बा अभी हुआ ही नहीं है। बस हिस्सी रविश क्या है, इजाजत नहीं देती, उसके अंदर ताकत व काबिलियत व सलाहियत नहीं है कि जो मोरेद तजर्बा वाकई हुए हैं उससे हट के हुक्म लगाए। लेकिन हम देखते हैं साइंसदान बनाते हैं थ्योरी, 100 दर्जा सेंटीग्रेड पर अगर पानी पहुंच जाए खास हालात के अंदर तो पानी बुखार बन जाएगा, कायदे के तौर पर बयान करते हैं इसको। जो बंदा भी मसलन डिस्प्रीन की गोली खाएगा अगर उसको फकत सरदर्द में मुबतला है वो उसका वो सरदर्द ठीक हो जाएगा, दुरुस्त है। मसलन न्यूटन ने जो सेब गिरने से जो है वो कानून जाज़बा को कश किया जाके, तो अब उसने ये कायदा कहां से बना लिया कि जो चीज भी नीचे गिरेगी वो जाज़बे की वजह से होगी। उसने तजर्बा तो फकत सेब के ऊपर किया था। क्या होता है यहां पे, एक फलसफी कायदे का इजाफा होता है। क्या इजाफा होता है फलसफी कायदे का, कानून इल्लियत, जिसको मैंने कहा था इल्लत का अगर इनकार कर दें तो किसी इल्म की जो है वो कदर कीमत बाकी नहीं रहती। कानून इल्लियत आकर ये कहता है कि इत्तेफाकी चीज ना दाइमी होती है ना अक्सरी होती है, यानी अगर किसी ने इत्तेफाकी तौर पे एक फेल अंजाम बगैर इल्लत के एक चीज ने अंजाम पाना हो, खुद ब खुद अंजाम पाना हो, दुरुस्त है, वो एक दफा तो हो सकता है, 2 दफा तो हो सकता है, 3 दफा तो हो सकता है, लेकिन 1000 मरतबा नहीं होता। अगर देखा आप अभी भी चले जाएं उर्फ के अंदर, अगर आप यहां से निकले दर्स से बाहर, 1 दफा आप निकले, आपका एक दोस्त आपको मिल गया, आप कहेंगे इत्तेफाकी है, दुरुस्त है। फिर आप जो है वो निकले 1 दफा, फिर मिल जाए, आप फिर भी कहेंगे मुमकिन है इत्तेफाकी हो कि गुजर रहे थे ऐसे मुलाकात होगी। 3री दफा होगी सोचना शुरू कर देंगे कि जैसे ही मैं दर से बाहर निकलता हूं ये क्यों मुझे मिल जाते हैं आकर, क्या वजह है इसकी। और मजीद तकरार हो जाए तो आपको यकीन हो जाएगा कि हतमन ये भी यहां पर मसरूफ होता है, और जिस टाइम पे मैं फारिग होकर बाहर निकलता हूं ये भी उसी टाइम पे फारिग होकर बाहर निकलता है और हमारा आपस में हमारी मुलाकात हो जाती है। बस वो यहां से इल्लत को क्या करता है, कष्ट करने के पीछे चला जाता है, क्या इल्लत है कि ये मुझे हर वक्त यहां पे मिल रहा है। अदवाजे इसी तरह आप अपनी जिंदगी के अंदर जाके परखना शुरू कर दें, जैसे ही तकरार होता है मुतअद्दिद बार किसी चीज का तो इंसान क्या करता है, उसकी इल्लत की तरफ चला जाता है। इल्लत की तरफ जाना इस बात की अलामत है कि कानून इल्लियत मौजूद है, और कानून इल्लियत ये कहता है कि इत्तेफाकी असर कभी भी न दाइमी होता है और ना ही अक्सरी, यानी गालिबन, यानी ज्यादा मरतबा अक्सर, यानी हाँ मसलन 60% 70% एक चीज अंजाम पा रही है तो अकल कहती है नहीं, ये 60-70% जो है अंजाम पाना किसी इल्लत की वजह से है। तो अब डिस्प्रीन की वजह से सरदर्द ठीक हो रहा है, ये तो कुछ लाख अफराद पे तजर्बा हुआ है, कुछ करोड़ अफराद पे तजर्बा हुआ है, इतने अरबों इंसान के ऊपर क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने वो इल्लत कश्फ कर ली है, और उस इल्लत की वजह से आप कहते हैं कि इसकी सबब ये सर दर्द जो है वो ठीक हो रहा होगा, चूंकि ये चीजें आपस में मिलती हैं। तो लिहाजा कानून इल्लियत ये जब तक बीच में ना आए आप तामीम नहीं दे सकते, तजर्बे से हट के दूसरे अफराद के ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते अगर ये कानून इल्लियत बीच में इजाफा ना हो। वाज़े पस मुलहदीन जिस रविश को इख्तियार करते हैं, या अगर कोई मुलहद बन जाता है तो अगर आप उसकी तहलील करें तो आपको एक बुनियादी उंसुर यह मिलेगा कि इसने फकत और फकत हिस और तजुर्बे पर एतमाद किया है और अकली और फलसफी जो कायदा था उसको इस्तेमाल नहीं किया, उस पर ईमान नहीं रखा, लिहाजा ये इल्हाद की तरफ जो है वो चला जाता है आकर। अब चूंकि मतालिब और भी थे कि असबाब के ऊपर बयान किए जाते, लेकिन वक्त में कमी मौजूद है, इंशाल्लाह कल मजीद मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।